ओम शांति। ठीक है, तो क्या क्या जानने को मिला, क्या क्या देखने को मिला, सुनने मिला अभी तक? स्वयं को जानने का मौका मिला और आई एम गुड, यस, और ऑल इज वेल रहना चाहिए, है ना? और आत्म शांति मिली। आई एम अ सोल, नॉट दिस बॉडी, डेफिनेटली नॉट, यस। भाई क्यों आग लगा रहे हो किसी की बस्ती में? हम मस्ती में रहे ये ठीक है, नो प्रॉब्लम, किसी की बस्ती को क्यों आग लगे ना? क्योंकि अगर बस्ती है तो कोई बसा हुआ होगा ना उसमें, तो किसी की बस्ती में आग नहीं लगाना, लेकिन हम मस्ती में जरूर रहना है। हाँ नहीं, मतलब कुछ भी हो रहा हो, मैं भाव तो समझ गई, जस्ट ऑन अ लाइटर साइड, पर मैं भाव समझ गई कि अब ये एटीट्यूड अपना लेना चाहिए, अब बस बहुत हो गया, इसको ठीक किया, उसको ठीक किया, उसको समझाया, इसको समझाया, उसके पीछे पड़े, इसके पीछे पड़े, ये ठीक करने, नथिंग वर्क्स, नथिंग वर्क्स अनलेस द अदर पर्सन वॉन्ट्स टू चेंज हिमसेल्फ और हरसेल्फ, राइट? वी कैन ओनली इंस्पायर देम, वी कैन नॉट चेंज एनीवन। ये जितना जल्दी हम समझ लें हम सुखी रहेंगे। हाँ, कोई बदलना चाहता है जरूर उसको सहयोग देंगे, पर वो शक्ति भी हमारे अंदर हो कि हम उनको जो सहयोग चाहिए वो सहयोग हम उनको दे सकें, है ना? हर आत्मा को कोई ना कोई गुण शक्ति का सहयोग चाहिए। आज इतना बड़ा दिल हमारा हो, इतनी विशाल बुद्धि हो, इतनी गहराई हमारी आत्मा के अंदर हो कि हम समझ सकें कि मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, है ना? चलो, वैसे तो चित्र का मैं वेट कर रही थी लेकिन आता रहेगा। आज का जो विषय है आपको पता होगा शायद, है ना? यू हैव दैट ऑन योर एजेंडा। आज साइकिल ऑफ टाइम, समय के बारे में समझेंगे। जैसे परमात्मा जब ज्ञान देते हैं तो क्योंकि वो सत्य है, परमात्मा सत्य है, क्यों उसको सत्य बोलते हैं? क्योंकि सत्य का मतलब जो था है और रहेगा, अमित, अविनाशी, अनादि, अनंत, उसी को सत्य कहेंगे, अपरिवर्तनशील। ऐसे ही परमात्म शक्ति जो सत्य है वो इसलिए भी सत्य है, एक तो उसका स्वरूप सत्य है, दूसरा वो जो कहता है वो भी सत्य कहता है, वो जो सुनाता है वो भी परम सत्य है, उससे अधिक सत्य कुछ नहीं हो सकता, है ना? वो इसलिए भी सत्य है। किसका सत्य हम किसको कहेंगे? मेरा सत्य, आपका सत्य नहीं, वो सब्जेक्टिव हो जाता है और सत्य कभी सब्जेक्टिव नहीं होता है। इस संसार के अंदर कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है, कुछ यूनिवर्सल लॉज हैं जो काम करेगा ही करेगा, चाहे मुझे उस लॉ के बारे में पता हो या नहीं पता हो, वो लॉ अपना काम करता रहेगा। दैट लॉ विल बी इन फोर्स, इट विल बी एट वर्क, वेदर आई नो ऑफ इट और आई डोंट नो ऑफ इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये हैंड माइक होता, मेरे हाथ में माइक होता, हैंड माइक होता, अगर मैं उस वो माइक मेरे हाथ से अगर गिर जाए, इफ आई ड्रॉप द माइक, व्हाट विल हैपन टू द माइक? वेयर विल इट गो? इट विल गो डाउन। व्हाई विल इट गो डाउन? व्हाई इज इट नॉट गोइंग अप? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हम सबको पता है। क्यों पता है? क्योंकि हमने पढ़ा है। कोई भी चीज छूटती है तो वो नीचे जाएगी। क्यों नीचे जाएगी? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है, और गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने बहुत कुछ सुना पढ़ा है, इसलिए हमें पता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कभी ग्रेविटी के बारे में पढ़ा ही ना हो, मैंने कभी भी गुरुत्वाकर्षण के बारे में ना सुना है ना पढ़ा है अभी तक, तब अगर माइक मेरे हाथ से गिरता है तो कहां जाएगा? तब भी वो वहीं नीचे जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे वो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पता है या नहीं पता है, वो लॉ काम करेगा क्योंकि वो सत्य है, वो प्रैक्टिकल है, इट इज एट वर्क इन द यूनिवर्स। ऐसे ही इस संसार के अंदर कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है जो अपने आप काम करता है। ऐसे ही समय का भी एक सत्य है, समय के बारे में भी कुछ हमें जानना बहुत जरूरी है। आज भी देखो समय का महत्व हमारे जीवन में कैसा है, कितना है, बहुत है ना। हम हर काम टाइम देखकर करते हैं, हर काम समय से करते हैं। अगर हमारा ध्यान समय पर रहे ही ना तो क्या होगा, कोई भी काम ठीक से नहीं होगा, और जो काम होने चाहिए, जब होना चाहिए, जैसे होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा, उससे व्यस्त हो जाएगा ना। इसलिए समय का हमारे जीवन से बहुत कनेक्शन है। आज हम जानेंगे परमात्मा जब सुनाते हैं, बताते हैं, इस पूरे विश्व के अंदर घड़ी में क्या बज रहा है, विश्व की घड़ी क्या समय दिखा रही है, कौन सा समय चल रहा है। आज किसी से पूछो भाई कौन सा युग चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है, तो क्या कहेंगे, सबको पता है कलयुग चल रहा है। लेकिन कलयुग में हम कलयुग की शुरुआत में हैं, मध्य में हैं या अंत में हैं, कैसे पता चले। हाँ, कितना ज्यादा काला हो गया, यू राइट, वेरी राइट ब्रदर। हाँ देखो शास्त्रों में, हर शास्त्र के अंदर समय के बारे में ज्ञान दिया हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कलयुग के अंत की बहुत सारी निशानियां दी गई हैं। उसमें से मैं आपको दो तीन सुनाती हूं, आप में से शायद कईयों ने गीता पढ़ी भी हो। कहते हैं जब इस संसार में ऐसा समय आएगा जब कन्या अपने मुख से वर मांगने लग जाए, समझ लेना कलयुग का अंत समीप है। ये किसने लिखा था, ऋषियों और मुनियों और विद्वानों ने लिखा था। उन्होंने उस समय लिखा कि जब ऐसा समय धरा पर आएगा जब कन्या अपने मुख से वर मांगने लग जाए तो समझ लेना कलयुग का अंत समीप है। दूसरा कहते हैं कि जब अनाज पुड़ियों में बिकने लग जाए, अनाज पुड़ियों में बिकने लग जाए मतलब छोटे छोटे पैकेट्स में आ जाए। अभी क्या है, 50 ग्राम 100 ग्राम रेडी टू ईट, ये वो कितना मिलता है ना। पहले मनोमन अनाज हुआ करता था, ये छोटे छोटे पैकेट का कोई सिस्टम नहीं होता था। तीसरा जब नर और नारी अपने बालों का श्रृंगार करने लग जाए, हेयर स्टाइलिंग्स आजकल कितनी होती है, कोई ऊपर खड़ा करता है, कोई साइड में, कोई पीछे, कोई खोल के, कोई बांध के, कोई कैसे, है ना, कितना उस एक बाल ही है बेचारा अपने हाथ में है, कुछ भी करते रहते हैं उसका, है ना। आज से 40 साल पहले, 30-40 साल पहले इतना नहीं था, क्योंकि अभी समय पड़ा हुआ था कलयुग के अंत के लिए। देखिए श्रृंगार का मतलब क्या होता है, पहले देवताएं भी श्रृंगार करते हैं, पर श्रृंगार का मतलब क्या होता है, श्रृंगार का मतलब जो चीज जैसी होनी चाहिए व्यवस्थित रूप से उसको वैसा अगर दे दिया जाए तो वो अच्छा लगता है। आज के समय में वो लक्ष्य नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस का समय है। आज हेयर के ऊपर बहुत कॉन्शियसनेस है, स्किन के ऊपर बहुत कॉन्शियसनेस है, इतना कॉन्शियसनेस पहले नहीं था। आप और हम जब छोटे थे तो था इतना कॉन्शियसनेस, था नहीं था, बढ़ रहा है ना। तो ये जितना बढ़ रहा है, दिस इज वन ऑफ द साइंस, नॉट द साइन, दिस इज वन ऑफ द साइंस, राइट। ऐसे ही चौथी निशानी बताते हैं, जब जानवर गंद खाने लग जाए, समझ लेना कलयुग का अंत समीप है। ये शास्त्रों में लिखा है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, हम अभी उसमें तो नहीं जाएंगे, परंतु हमें कहीं ना कहीं ये बातें सुनने को, देखने पढ़ने को मिलेंगी। दूसरी बात, इस संसार के अंदर जैसे 24 घंटे में पहला पहर सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, फिर रात होती है, रात के बाद फिर से सुबह हो जाती है। इसका मतलब साइक्लिक है ना, बहुत सारी चीजें इस संसार में साइक्लिक रूप से चलती हैं। जैसे चार पहर होते हैं वो भी साइक्लिक है, चाहे रात कितनी ही काली क्यों ना हो पर सवेरा होना निश्चित है, चाहे कोई माने या ना माने। ऐसे ही ऋतु आती हैं, सीजन आते हैं, एक साल में हमें पता है चार सीजन आते हैं और वो चार सीजन हर साल वैसे ही रिपीट होता है। एक बीज होता है, सीड होता है, सीड को अगर आप मिट्टी में दबाएंगे तो दो पत्ते पहले अंकुरित होगा, फिर उसके बाद उसका ताल टालियां शाखा वृक्ष निकलेगा, पत्ते निकलेंगे, फूल फल आएगा, फिर फल के अंदर जो बीज होगा फिर से वो मिट्टी में जाएगा, तो सेम साइकिल रिपीट हो जाएगा। मनुष्य की आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है तो उसको एक शरीर मिलता है जिसके आधार पर वो एक बच्चा कहलाता है, एक परिवार के अंदर जन्म लेकर बच्चा बड़ा होता है, युवा बनता है, किशोरावस्था में आता है, फिर उसके बाद और आयु बढ़ती है, फिर उसके बाद वृद्ध होता है, फिर वृद्ध होने के बाद आत्मा फिर से चोला बदलती है, फिर शरीर छोड़ती है, माता के गर्भ में जाती है, फिर से बच्चा बनता है, साइक्लिक। ऐसे ही परमात्मा जब सत्य ज्ञान देते हैं तो समय का ज्ञान देते हुए बताते हैं कि इस संसार के अंदर जो समय का चक्र है, जिसको काल चक्र कहिए, समय का काल मतलब समय, काल का मतलब मृत्यु मत समझना आप, काल का मतलब समय। तो समय का चक्र कहिए या सृष्टि का चक्र कहिए, वर्ल्ड साइकिल या टाइम साइकिल, ये जो चक्र है ये चक्र को एक बार कंप्लीट होने में परमात्मा ने बताया 5000 वर्ष का समय लगता है। ये किसने बताया? भगवान कह रहा है, जो सृष्टि का नियंता है। वो जब सत्य ज्ञान देते हैं तो हर बात का ज्ञान देते हैं, कोई भी इनकम्प्लीट बात नहीं छूटेगी, हर बात का उत्तर भगवान दे सकता है। तो समय के ज्ञान में परमात्मा ने कहा ये सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, ये 5000 वर्ष के चक्र में मुख्य 5 युगों से होकर गुजरता है और उसमें से 4 युग सबसे बड़े युग हैं। अभी चित्र आएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा। भाई जी कुछ है अरेंजमेंट बोला है, ठीक है। तो 4 युग जब आते हैं, 4 मुख्य युग कहलाते हैं और उस मुख्य युग में सबसे पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग, चौथा है कलयुग, जिसको कलयुग कहते हैं, कलयुग माना कल कलेश वाला युग। और जब कलयुग के बाद फिर क्या आएगा? सतयुग आना चाहिए, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा होता है। तो देखिए हर धर्म की किताब ये कहती है कि माना समय के बारे में ज्ञान देती है और बहुत सारी निशानियां भी बताती हैं। जब जब इस धरती पर धर्म की ग्लानि का समय होगा, मेरा आना संभव है, लेकिन भगवान आएगा तो कोई बहुत बड़े लक्ष्य के साथ आएंगे। सबको दिखाई पड़ रहा है? पीछे वालों को दिख रहा है? आप बाद में क्लास के बाद नजदीक आकर सब कुछ पढ़ के जाना, ठीक है? लेकिन अभी जितना दिख रहा है उससे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, अगर सॉफ्ट कॉपी होता तो प्रोजेक्ट कर देते, ठीक है? अच्छा इधर भी है, इसको भी यहाँ खड़ा कर दीजिए, इसको थोड़ा पीछे रख दीजिए, नहीं तो कहीं पे वो दिखाई देगा उनको, पीछे वालों को। दैट्स ओके, अभी आप ध्यान दीजिएगा क्लास में, बाद में आप चित्र को भी ध्यान से देख सकते हैं। तो सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है ये परमात्मा ने बताया, और सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। लेकिन जब कलयुग सतयुग बनना होता है तो उस कलयुग के अंत के समय में, अभी कलयुग गया नहीं, सतयुग अभी आया नहीं, वो जो बीच का समय होता है उसको कहते हैं संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। आज हर धर्म की आत्मा परमात्मा को पुकार रही है, कोई ग्रंथों से, कोई मंत्रों से, कोई बाइबल से, कोई कुरान से, कोई किसी से, कोई किसी से। आज हर आत्मा किसी न किसी बात से परेशान दुखी होकर उस ईश्वर को पुकार रही है। किस लिए? सुख शांति दे दो, ये दुनिया बहुत अभी रहने लायक नहीं हो रही है, इसको बदलो, कुछ तो बदलाव आना चाहिए, है ना? तो परमात्मा ही वो बदलाव ला सकते हैं। तो कलयुग को आज हमें पता है कलयुग चल रहा है। जब इस संसार में सतयुग था, समझने के नाते से अभी हम शुरू करेंगे सतयुग से। आपको अगर ये चित्र दिख रहा हो तो आप देखेंगे ऊपर से छोटी छोटी बिंदियां नीचे आ रही हैं, पॉइंट्स दिख रही है, पॉइंट ऑफ लाइट नीचे आती हुई दिख रही है। वो क्या है पता है? जब परम धाम से, परमात्मा के घर से, हम अपने घर से आत्माएं छोटी छोटी मणियों के समान अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में, प्योर आत्मा जब नीचे उतरती है इस धरा पर, उतरने का टाइम होता है सतयुग का समय। सतयुग माना इस संसार में एक ऐसा समय जब सत्यता का युग था, पवित्रता सुख शांति का समय था। इसी धरा का एक प्रैक्टिकल ऐसा समय जब प्रकृति के पांचों तत्व और मनुष्य आत्माएं सब सुखदाई थे, आज दोनों दुखदाई हैं, है ना। एक समय ऐसा था इसी धरा पर जब प्रकृति भी और मनुष्य आत्माएं भी सुखदाई थे। और ऐसे सतयुगी समय में, जिसको हम गोल्डन एज कह सकते हैं, फिर उसके बाद अब 5000 वर्ष को अगर आप चार में डिवाइड कर दो तो एक युग की आयु कितनी बनेगी? 1250 वर्ष। परमात्मा ने बताया इस संसार में हर युग की जो आयु है, ड्यूरेशन है, अवधि है, वो 1250 वर्ष की होती है। तो जब सतयुग होता है तो इस संसार में सुख और शांति होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा आत्मा से भी पवित्र है, तन भी उसका पवित्र होता है। अब आप सोच के देखो, एक ऐसी सोल, माना ऐसी सोल्स जो परम धाम से नीचे उतर रही है, वो संसार में आकर जन्म लेकर अपना रोल प्ले कर रही है। कैसा रोल प्ले करेगी, अच्छा या बुरा? बेस्ट रोल्स प्ले करेंगी, है ना, क्योंकि दे आर इन देयर बेस्ट फॉर्म, दे आर इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म। अभी वो मलिन नहीं हुई है, उनके अंदर कोई मैल नहीं चढ़ा, अभी उन्होंने कर्म किया ही नहीं ऐसा जिससे कोई कर्म का प्रभाव आ जाए। तो इसलिए जब परमधाम से आत्मा नीचे उतरती है, शुरू करती है उतरना सतयुग के समय पर, ऐसे समय पर परमात्मा ने कहा कि बेस्ट रोल्स प्ले करने वाली आत्माओं को, दिव्य गुणों से भरी हुई आत्मा जब नीचे आकर के जन्म लेती है, हम उनको कहते हैं देवी और देवताएं। इसका मतलब दिव्य पुरुष। आपको पता है पुरुष संस्कृत में पुरुष आत्मा को कहा जाता है, ये शरीर का पुरुष स्त्री वाली बात नहीं है, पुरुष संस्कृत में आत्मा को कहते हैं। तो दिव्य पुरुष जिनको हम मानते हैं, माना दिव्य आत्मा, दिव्य गुणों से भरी हुई आत्मा जब नीचे आती है, जन्म लेती है, उन्हीं को वो बेस्ट रोल्स प्ले करते हैं जन्म लेकर। तो हम उनको क्या करते हैं, उनका पूजन करते हैं, गायन करते हैं, वंदन करते हैं, उनका कीर्तन गायन करते हैं देवी देवताओं के रूप में। उसके बाद आता है त्रेता युग। 1250 वर्ष बीतने के बाद त्रेता युग आता है। परमात्मा कहते हैं ऐसे समय पर, जिसको हम सिल्वर एज कह सकते हैं, क्योंकि सतयुग के समय में जितनी भी आत्माएं नीचे उतरती है ना, उसकी क्वालिटी क्या होती है, उस आत्मा की क्वालिटी होगी सर्वगुण संपन्न, माना उनके अंदर हर गुण फुल होगा, कंप्लीट होगा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। आप कलाएं समझते क्या होता है, कला मतलब स्किल्स एंड टैलेंट्स, हर एक कला में वह आत्माएं निपुण होती हैं, सर्व कला 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, माना एक भी उनके अंदर विकार नहीं होगा, परमधाम से उतरती हुई आत्माओं की क्वालिटी होती है ये, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। जैसे ही मैं आपको कहती हूं मर्यादा पुरुषोत्तम, तो हो सकता है कईयों के मन में आ रहा होगा वो तो राम जी थे, क्या बाकी देवताएं मर्यादा पूर्वक नहीं होते थे क्या? होते थे सभी, इसीलिए वो देवता हैं। हर मर्यादा उत्तम, माना ऐसे पुरुष जो मर्यादाओं में उत्तम थे। और हर मर्यादा माना किस चीज की मर्यादा, सोचने की मर्यादा, बोलने की मर्यादा, व्यवहार करने की मर्यादा, संबंध निभाने की मर्यादा, कर्म करने की मर्यादा, हर बात की मर्यादाओं में वे उत्तम थे। और फिर अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही उन आत्माओं का परम धर्म होता था। इस क्वालिटी की आत्मा नीचे आती है। अब वो जब जन्म लेकर रोल्स प्ले करेंगे तो क्या होगा, देवी देवता ही तो कहलाएंगे ना। इसीलिए साधारण मानव आज अपने से श्रेष्ठ मानवों की पूजा करते हैं। देव आत्माएं भी देव आत्मा है, परमात्मा तो है ना, देव आत्माएं भी परमात्मा की संतान है। परम धाम से जब परमात्मा के घर से आत्मा नीचे आती है, बिल्कुल परमात्मा के गुणों से भरी हुई होती है, इसीलिए लोग उनको कहते हैं भगवान जैसा रूप है। और ऐसी आत्माएं जब संसार में विचरण करती हैं, प्रैक्टिकली इसी धारा का वो एक समय था, सत्ययुगी समय था। फिर उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में भी देवताएं विचरण करते हैं, उस समय भी आत्माओं की क्वालिटी दैवी होती है। लेकिन सत्ययुगी समय पर जब आत्माएं नीचे उतरती है ना, उन आत्माओं को तुलना किया जाता है, सूर्यवंशी घराना कहा जाता है। सूर्यवंशी घराना इसलिए कहते हैं क्योंकि सत्ययुग के समय पर परमात्मा ने सत्य ज्ञान देते हुए कहा कि सत्ययुग के समय पर श्री कृष्ण राधे जैसी आत्माएं जन्म लेती हैं, जो बड़े होने के बाद ही स्वयं ही लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। इसीलिए माना जाता है क्योंकि दोनों एक ही हैं। कहते हैं कि कृष्ण जो है ना, वो नारायण जी का बाल रूप है, नारायण का रूप माना जाता है। क्यों? क्योंकि सोल एक ही है। ये बाल्यावस्था है, वो किशोरावस्था है। तो ऐसी आत्मा, श्री कृष्ण जैसी आत्मा, श्री नारायण जैसी आत्मा, आप सोचो उससे ऊंची कोई पवित्र आत्मा इस संसार में हो सकती है? दिव्य गुणों से भरी हुई आत्माएं, वो आत्माएं जब इस, क्योंकि देखिए समय का कनेक्शन आत्मा के साथ है, जिस क्वालिटी का समय होगा उस क्वालिटी की आत्मा परमधाम से नीचे आएगी, ठीक है? उस क्वालिटी की आत्माएं नीचे उतरती रहेंगी। समय जैसे जैसे परिवर्तित होगा, आने वाली आत्माओं की क्वालिटी भी उस प्रकार की आएंगी। तो सत्ययुगी समय पर देव आत्माएं संसार में विचरण करते थे। फिर उसके बाद 1250 वर्ष के बाद आता है, परमात्मा ने कहा त्रेता युग। त्रेता युग में राम जी और सीता जी का राज्य चलता है, और त्रेता युग वाली देवताओं को चंद्रवंशी कहा जाता है। इसलिए आप देखो जब नाम भी लिया जाता है देवताओं का, कहते हैं सूर्य नारायण, राम चंद्र। कहते हैं सूर्य की तुलना श्री नारायण से की जाती है। क्यों? कारण क्या है? आपने देखा होगा सूर्य जो होता है ना, उसकी कलाएं कभी घटती बढ़ती नहीं है, वो हमेशा फुल रहता है, कंप्लीट। वो ऐसा ही हमेशा एकरस रहता है ना, और उसका तेज सबसे अधिक होता है। क्योंकि आपने देखा होगा श्री कृष्ण या श्री नारायण के मुखमंडल को जब भी दिखाया जाता है, उनके चेहरे में उतार चढ़ाव नहीं दिखाते हैं, सदा प्रसन्न, सदा स्थिर, सदा ही शक्तिशाली, सदा संतुष्ट, सदा दातापन का भाव और सदा ही विवेकवान, सदा एकरस अवस्था, उनकी मन की स्थिति को एकरस दिखाया जाता है। इसीलिए उनकी तुलना सूर्य से की जाती है। राम जी के कथाओं के अनुसार राम जी के जीवन में उतार चढ़ाव दिखाते हैं, जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है ना, ऐसे राम जी के जीवन में भी उतार चढ़ाव दिखाते हैं। तो तुलना क्या हुआ? ये तुलनात्मक बात है, ऐसा नहीं कि कोई कम है कोई ज्यादा, ऐसा नहीं है। परंतु शास्त्रों में जिन ऋषियों और मुनियों ने शास्त्र लिखे, तुलना कर करके, कथाएं दिखा कथाएं बता बता कर, पात्र दर्शा दर्शा कर हमें कई बातें समझाने की कोशिश की गई है। तो इसलिए 1250 वर्ष त्रेता युग का भी चलता है। परमात्मा ने एक बहुत अच्छी बात यह भी स्पष्टता दी है कि जब इस धरा पर सत्ययुग और त्रेता का समय होता है, वो ऐसा समय होता है जब इस संसार में एक धर्म, एक राज्य, एक सत्ता, एक भाषा, एक मतता और एक विश्व होता है। इसीलिए सुख शांति होती है, सब कुछ एक होता है, कोई बहुत सारे मना मत भेद नहीं होता, कुछ भी भिन्न नहीं होता है। आज क्या है, सब कुछ बहुत अलग है, धर्म भी एक नहीं है, मत भी एक नहीं है, भाषा भी एक नहीं है, विश्व भी एक नहीं है, उसके भी पांच टुकड़े हैं, धरती भी एक नहीं है ना, पांच टुकड़े हैं, हर चीज में भिन्नता है। डाइवर्सिटी एक अच्छी बात है, परंतु जब हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, विश्व में जब सत्ययुग त्रेता था तो सब कुछ एक था और स्थाई सुख शांति थी, ये परमात्मा ने बताया। तो वो एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक सत्ता, वो कौन सा धर्म था जो इस संसार में शुरू में आदिकाल में हुआ करता था? देखिए, सत्ययुग त्रेता के समय में ऐसे दिव्य पुरुष देवी देवताएं हुआ करते थे जिनके हाथ में राज्य सत्ता और धर्म सत्ता एक ही के हाथ में हुआ करती थी। इसी संसार का वो एक ऐसा समय जब राज्य सत्ता और धर्म सत्ता एक के हाथ में होती थी। इसलिए धर्म में भी ताकत थी, राज्य करने वालों में भी सशक्तता थी। आज क्या है, जरूरी नहीं जो राज्य कर रहे हैं वो धर्म का पालन करें, और जो धर्म का पालन कर रहे हैं उनके हाथ में सत्ता है ये भी जरूरी नहीं है। इसीलिए धर्म सत्ता राज्य सत्ता अलग होने के कारण आज हम देख रहे हैं क्या हाल हो गया, राजनीति में भी शक्ति कम हो गई, धर्म की भी शक्ति हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो एक ऐसा समय जब परमात्मा ने कहा, इसी धरा का प्रैक्टिकल वो समय जब धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक के हाथ में होती थी, एक धर्म हुआ करता था इस संसार के अंदर। वो एक धर्म कौन सा था? आजकल क्योंकि सनातन धर्म का बहुत लोग सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, इसलिए नहीं ना, नहीं, इसको समझते हैं, आप उत्तर सही दे रहे हैं, परंतु कैसे था, उसका क्या अर्थ है, सनातन धर्म का अर्थ ही क्या है? सृष्टि के आदि काल में, सत्ययुगी समय में, सृष्टि चक्र की आदि समय में आदि सनातन देवी देवता धर्म हुआ करता था। ये कौन सा धर्म है? इस धर्म की मान्यताएं क्या थी? आदि अर्थात शुरुआत। इस सृष्टि चक्र की शुरुआत के समय में, ऐसे तो देखो वृत्त है, माना साइक्लिक है, साइकिल में कोई एंड और स्टार्ट नहीं होता है, परंतु फिर भी जब सत्यु की समय की आदि काल था, जब परमधाम से आत्माएं नीचे उतरना शुरू करती हैं, उस समय की बात, उस समय को हम आदिकाल सृष्टि का कह सकते हैं उस चक्र के हिसाब से। तो आदि के आदि काल में आदि सनातन, सनातन का अर्थ होता है, क्या होता है सनातन का अर्थ, आप में से कईयों को शायद पता भी होगा। हां जी, कंटिन्यूअस मतलब वो था है और रहेगा वाला हिसाब ना। हाँ, तो मतलब जो प्राचीन है। और सनातन का एक और अर्थ भी होता है, सनातन का अर्थ होता है पवित्र, पूज्य, शुद्ध, ठीक है। आदि काल के समय में जो सनातन अर्थात पवित्र, पूज्य, प्राचीन देवी देवताएं, देवी देवताओं का जो धर्म होता था वो धर्म चला करता था। लेकिन वो देवी देवताओं के धर्म की मान्यताएं क्या थी? उस धर्म को मानने वाले लोग, उस धर्म पर चलने वाले लोग स्वधर्म के आधार पर जीवन शैली रखते थे। स्वधर्म का मतलब ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति के आधार पर व्यवहार करते थे। वो प्रेम आपस में भाईचारा था, शक्ति संपन्न आत्माएं थी। सत्ययुग त्रेता में देवी देवताओं को ना डिप्रेशन होता था, ना एंग्जाइटी होता था, ना फियर होता था, ना घबराहट होती थी, शक्तिशाली आत्माएं थी। और पवित्रता उन आत्माओं की विशेषता थी, तन भी पवित्र, मन भी पवित्र था। ऐसे ही स्वधर्म के आधार पर ज्ञान युक्त होकर व्यवहार करते थे, समझ के साथ व्यवहार करते थे। यानी कुछ भी बोल दिया, कुछ भी सोच लिया, कुछ भी कर दिया और फिर कुछ भी हमारे साथ यूं ही होता जा रहा है, नहीं, ज्ञान युक्त होते थे। तो ऐसे स्वधर्म के आधार पर चलने वाली आत्माएं देवी देवताएं कहलाया करते थे। फिर ऐसे एक धर्म में, कहते हैं ना रिलीजन इज माइट, कौन से रिलीजन की बात हो रही है जो माइटियस है, जो स्वधर्म के आधार पर जब आत्मा चलती है उस धर्म में, धर्म का अर्थ ही क्या होता है, धारणा। तो जब मनुष्य आत्माओं के अंदर, पवित्र पूज्य आत्माओं के अंदर धारणाएं श्रेष्ठ होती थी, गुणों के आधार पर धारणा होती थी, तब वो माइटियस होते थे, बहुत शक्तिशाली होते थे। That religion was mightiest. फिर उसके बाद आता है त्रेता के बाद द्वापर युग। आप चित्र में देख रहे होंगे, पता नहीं शायद दिख रहा है कि नहीं, तो द्वापर युग, द्वापुर का मतलब ही होता है दूसरा पुर, पुर मना शाखा, ब्रांच, मना अभी तक एक धर्म, एक भाषा, एक सत्ता, एक राज्य, एक विश्व था, विश्व भी एक ही था। विश्व का मतलब परमात्मा ने कहा ये जो धरती का टुकड़ा है ना, ये जो धरती है ना, ये एक पीस में था। साइंटिस्ट इस बात को जानते हैं, जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इस एरिया ऑफ ऑपरेशन में हैं, उन लोगों को पता है एक समय आता है जब इस धरती पर एक्सप्लोजन्स होते हैं और वो खंड पांच टुकड़ों में बटता है, पांच में बट गया पर अनेक टुकड़ों में धरती टूटकर बटती है, जिसको हम कॉन्टिनेंट्स कह रहे हैं आज, या सब कॉन्टिनेंट्स कह रहे हैं। और फिर उनको ये पता है कि अगर ये एक्सप्लोड होकर के बटता है तो एक समय आता है, एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी रहती है, जब ये ऐसा कुछ होगा इस धरा पर कि वो फिर से वो सारे टुकड़े एक होकर के एक विश्व बनेगा, एक धरती बनेगी। फिर एक समय आएगा जब फिर एक्सप्लोड होगा, फिर ये अलग होंगे और फिर साइक्लिक समय। कहते हैं ना इतिहास अपने को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वो हर बात के लिए सही है, वैलिड है, अप्लाई होता है। ठीक है, ओवरडोज तो नहीं हो रहा, बहुत गहराई में तो नहीं जा रहे, यू गेटिंग माई पॉइंट राइट? हाँ जी, आई गॉट योर पॉइंट ब्रदर। हाँ, आपको नया लग रहा है ना, नया तो होगा ही, आपने जो पढ़ा है ना, सुना है ना, ये सेम नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा सुना है वो मनुष्यों का लिखा हुआ और सुनाया हुआ और अज्यूम किया हुआ, उसके आधार पर जो भी उन्होंने अजम्पशंस लेकर के, जिसको हम आज साइंस कह रहे हैं, दैट इज मटीरियल साइंस। नो, जस्ट सेकेंड ब्रदर, आई गॉट योर पॉइंट, विच इज अ वेरी वैलिड पॉइंट ऑल्सो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू address it, to some extent. We'll go into deeper, maybe after this session. नहीं, वो शंका अभी नहीं क्लियर हो सकती, लेट द सेशन कंप्लीट, मे बी बाय दैट टाइम आपकी शंका दूर हो जाएगी। ठीक है, देर इज अ स्कोप, वी आर स्टिल हाफ साइकिल, सो वी आर हाफ वे टू गो मोर। ठीक है, बट आई गॉट योर पॉइंट। देखिए, बहुत सारी बातें जब हम आध्यात्मिक सुनते हैं, अध्यात्म में हो सकता है आप में से कईयों ने कुछ चीजें सुनी हुई जरूर होंगी, और बहुत सारी बातें अध्यात्म की भी आपने नहीं सुनी होंगी, है ना? तो और दूसरी बात, परमात्मा जब इस धरा पर आकर ज्ञान देते हैं तो डेफिनेटली मनुष्य के ज्ञान से परमात्मा ज्ञान अलग होगा। मनुष्य का सुनाया हुआ ज्ञान अगर वही आकर भगवान ने ही बोलना होता तो फिर उसकी जरूरत ही क्या थी। परमात्मा ज्ञान में, मनुष्य ज्ञान में फर्क होता है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि और परमात्मा बुद्धि में अंतर है। ठीक है, हाँ, हम ये नहीं कह रहे, मैं ये नहीं कह रही हूं यही सत्य है आपको अभी मानना है, नहीं। परमात्मा ने हम सबके सामने, हमारे सामने भी हर बात की सत्यता को सामने रख दिया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब प्रूफ की बात आप कर रहे थे, नो बडी विल गिव अस एनी प्रूफ, आई कांट गिव यू अ प्रूफ, यू कैन नॉट गिव मी अ प्रूफ, माई एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंटल, माई एक्सपेरिमेंट्स, माई ओन एक्सपीरियंसेस विल बी माई प्रूफ। सो यू हैव टू क्रिएट योर ओन प्रूफ ब्रदर, एक्सपेरिमेंट विद इट, पॉन्डर अपॉन इट, थिंक अबाउट इट, चिंतन जरूर करना पहले, कोई भी निष्कर्ष में पहुंचने से पहले चिंतन आवश्यक है, मनन आवश्यक है, अध्ययन आवश्यक है, उसके बाद हम उस पर एक्सपेरिमेंट करें, इफ इट वर्क्स और नॉट वर्क्स, वेयर डज इट रिलेट वगैरह। समय दें उस अध्ययन को, उसके बाद आप निष्कर्ष निकालना। अभी हम एक ज्ञान की बात को सुन रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, अब ये चिंतन का विषय बनेगा आप सबके लिए। नाउ इट इज अप टू यू टू एक्सप्लोर इट फर्दर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, ओके ना? अगर आज मुझे भी किसी ने कभी अगर कहा होता आज से 40 साल पहले आपको सफेद कपड़े पहनने होंगे, शायद मैं भी नहीं पहनती। यू हैव टू वेयर व्हाइट, आई वुडंट हैव डन दैट, डेफिनेटली नॉट। लेकिन जब मुझे समझ आया कि सफेद रंग का अर्थ क्या होता है, सफेद पहनने से कितनी फ्रेशनेस, सफेद पहनने से शांति, सफेद रंग शांति और पवित्रता, प्योरिटी का प्रतीक है, और सफेद पहनकर जब अच्छा महसूस होने लगा तो मैंने खुद ने ये डिसाइड किया मुझे पहनना है, है ना? सो यू हैव टू एक्सप्लोर फॉर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स बेटर। चले आगे, हाँ, सृष्टि चक्र में आगे बढ़े। ओके, तो सत्युग त्रेता द्वापर, द्वापर माना दूसरा पुर। दूसरा पुर क्यों बोला? अच्छा, ओके, हाँ ठीक है, पर इस कॉपरेज में ना वो अन्य धर्म नहीं आ रहा है, इसमें अन्य धर्म है, अन्य धर्म नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, ओके, ग्रेट। इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड भी है जो शिव भाई कह रहे हैं, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू मे बी कम एंड टॉक अबाउट इट इन द लास्ट, विच इज वेरी गुड। ठीक है, तो संसार के अंदर तीसरा युग आता है द्वापर, जब अन्य सभी धर्मों की, अलग अलग धर्मों की प्रवेशता शुरू होती है। फिर उसके बाद आता है कलयुग। कलयुग माना कलह कलेश वाला युग, कलयुग, जब कलह कलेश होता हो, इसलिए कलयुग को हमेशा काले रंग में दिखाते हैं। सत्युग गोल्डन एज, त्रेता युग को हम सिल्वर एज कह सकते हैं, और द्वापर युग को कॉपर एज कह सकते हैं, कलयुग को हम आयरन एज कह सकते हैं। क्यों गोल्ड सिल्वर कॉपर आयरन क्यों कह रहे हैं? संस्कार के अनुसार, मनुष्य आत्माओं के जो संस्कार है ना, वो सोने के समान, चांदी के समान, तांबे के समान, और अभी ऐसा हो गया है, है ना? तो फिर जब कलयुग आता है, आज कलयुग में हम कहां खड़े हैं, शुरुआत में, मध्य में या अंत में? और कलयुग के बाद फिर कौन सा समय आना है? फिर से सतयुग आना है। लेकिन कलयुग और सतयुग के बीच का जो समय होता है, जिसको संगम युग कहते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम माना एक ऐसा समय, एक ऐसा संगम, एक युग और दूसरे युग का भी वो संगम है, एक साइकिल और दूसरे साइकिल का भी वो संगम है, है ना? ऐसे संगम पर कलयुग को अगर सतयुग बनना है, माना सृष्टि को अगर बदलना है, सृष्टि तो हम और आपसे बनती है, हम और आपसे सृष्टि बनती है ना, अगर सृष्टि को बदलना है तो किसको बदलना पड़ेगा, किसको बदलना पड़ेगा? हमें बदलना पड़ेगा, मतलब आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर आज हमारे अंदर कलयुगी संस्कार काम करेंगे तो सृष्टि कलयुग कहलाएगी, हमारे अंदर सत्युगी संस्कार काम करने लग जाएंगे तो सृष्टि सत्युग कहलाएगी। आज देखो संसार में जो भी हालत है ना बाहर में, वो कहां से उपज हुई है? यहां से। तो चेंज भी, अगर मुझे बाहर का वर्ल्ड ऑर्डर बदलना है, सुख शांति में दुनिया बनानी है, तो चेंज कहां से लाना पड़ेगा? यहां लाना पड़ेगा। तो इसीलिए अपनी मन की स्थिति को श्रेष्ठ बनाना, गुणवान बनाना, शक्तिशाली बनाना ही सत्युगी संस्कारों को धारण करना है, अपनी डिविनिटी को वापस रीगेन करना ही सत्युगी संस्कार या सत्युगी संसार बनाना है। तो आर वी रेडी फॉर इट? हम सब सत्युग में चलने वाले हैं, क्योंकि देखिए सत्युग में कोई देवताएं रेडीमेड ऊपर से नीचे नहीं आने वाले हैं, ऊपर कोई देवता नहीं है, देव आत्मा ही वास्तव में, अगर आप इसको देखें, अगर समझने का प्रयास करें, देव आत्माओं का साधारण स्वरूप ही मानव है, मानव का दैवी गुणों वाला स्वरूप ही देवता है। यही देवात्मा है। तो दिव्य गुणों से जैसे ही आज का मानव अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करने लगेगा तो युग परिवर्तन होने लग जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बनना है ना देवता? किस किस को बनना है? किस किस को देवता बनना है? दो चार ही बनेंगे, बाकी सोच रहे हम इंसान ही बन जाएं, बहुत है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, बहन जी आप लोग बन जाएंगे देवता, मुझे तो लगता है मैं तो इंसान ठीक ठाक बना रहा हूं तो ठीक है। सिर्फ इसमें एक्चुअली भगवान भी वही बात कह रहा है जो हम कह रहे हैं। हम आज कहते हैं वी हैव टू बी स्ट्रांग, वी हैव टू बी पॉजिटिव, वी हैव टू बी पावरफुल, वी हैव टू बी वैल्यू बेस्ड। वैल्यूज किसके अंदर होते हैं? देवताओं के अंदर। माना जो दैविक गुण जिसके अंदर हो, जिस मानव के अंदर, वही देवता कहलाते हैं। वर्च्यूज जिसके अंदर हो वही देवता है। और पावरफुल कौन होते हैं? जिसके अंदर वैल्यूज और वर्च्यूज होते हैं। स्ट्रांग कौन होता है? जिसके अंदर गुण और शक्तियां काम करती हैं, वही तो देवता है। भगवान उसको नाम दे रहे हैं कि यही देवता होते हैं। हमने सोचा देवता अलग है, हम अलग है, हम तो देवता बन नहीं सकते, ऐसे सोच लिया हमने। भगवान ने कहा नहीं बच्चे, आप ही एक समय पर जब मेरे घर से नीचे आए थे, मेरे समान गुणों को लेकर उतरे थे, बहुत प्योर थे, स्ट्रांग थे, पावरफुल थे, बहुत अच्छा कंप्लीट वर्चुअस थे। फिर समय के बदलते बदलते जन्म बाय जन्म जब आत्मा साइकिल में आती रही, वेयर एंड टेयर होने मनुष्य कहला रहा है, लेकिन वही मानव एक समय पर देवात्मा कहलाती थी। ठीक है, तो बनना है ना देवता। अच्छा बताओ, संसार को सत्युग बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आज आपको कहा जाए प्लीज 1000 रुपीज का डोनेशन दे दो, सत्युग बन जाएगा, आप करेंगे कि नहीं? आप कहेंगे 1000 क्यों, प्लीज 1 लाख। पर ये वाला धन सत्युग नहीं बना सकता। भगवान कहते हैं बच्चे सत्युग को लाना है, बहुत आत्माएं परेशान है, दुखी है, समय परिवर्तन की ओर अग्रसर है। हम चाहे या नहीं चाहे, हम बने या नहीं बने, जिसको बनना है वो तो बन ही जाएगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, हर रात के बाद सवेरा होना निश्चित है। अगर आप ज्ञान के नेत्र से देखें तो आज भी आपको सत्युग आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर सत्युग को आना है तो कलयुग को जाना पड़ेगा ना, कलयुग को जाना पड़ेगा ना। ओम शांति, आर यू ऑल हियर? अच्छा, हाँ कंस का अस्तित्व था या नहीं था? आई विल आंसर दिस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पॉइंट ऑफ माइंड, श्योरली। ठीक है, रिमाइंड मी इफ आई फॉरगेट। तो कलयुग को सत्युग बनाना है, तो हम सब तैयार हैं? कोई बाहर से नहीं आने वाला बनाने के लिए, हमारा संसार है, हम ही ने उसको कलयुग बनाया है, तो सत्युग भी हम ही को बनाना पड़ेगा। आर वी रेडी? इसमें आपका 1000 का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, आत्मिक परिवर्तन चाहिए। आर वी रेडी? थोड़ा सा बेहतर ज्ञान, ज्ञान माना समझ, पवित्रता, सुख शांति, आनंद प्रेम शक्ति से आत्मा को भरने के लिए तैयार है? हाँ? तो जब ऐसी आत्माएं रेडी हो जाएंगी, तो अब देखो कैसे रेडी होंगे, क्योंकि परमात्मा को इस संसार में आकर इंटरवीन करना पड़ता है कलयुग को सत्युग बनाने के लिए, कलयुगी आत्माओं को सत्युगी आत्मा बनाने के लिए। जब ऐसा परिवर्तन आता है, क्योंकि ये परिवर्तन कोई और नहीं कर सकता, भगवान को कहते हैं ना वो सृष्टि का स्थापक है, रचना करते हैं। तो सृष्टि की स्थापना करने का मतलब क्या होता है? एक नया प्लैनेट क्रिएट करना नहीं होता है। ही नेवर क्रिएट्स अ न्यू प्लैनेट, प्लैनेट इज द सेम ऑलवेज। लेकिन जब जब इस संसार के अंदर, अच्छा मान लीजिए एक दिन के लिए, समझ लो सपोज एक दिन के लिए इस संसार में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं उनके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म हो जाए, और एक दिन के लिए उनके जो 7 गुण है ना, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, एकदम शाइन, आउटशाइन कर रही है हर आत्मा के अंदर, 7 गुण से भरी हुई आत्माएं हैं, ये संसार कैसा होगा? वही करने भगवान आया है। सत्युग बनाने के लिए भगवान को कोई मैजिक नहीं करना है। एक सिंपल सी बात है, जिन्होंने कलयुग उसको बना दिया, जिनके कर्मों ने कलयुग, कोई बात नहीं गिर गया है उठा लेंगे, जिन्होंने कलयुग बना दिया भगवान को पता है ये मेरी वो संतान है जो कभी परमधाम से नीचे आए थे, इनके अंदर बहुत सारे गुण और शक्तियां भरी हुई थी क्योंकि ये मेरी संतान है। भगवान को हमारे पोटेंशियल का पता है, हमें नहीं पता, हम भूल गए। अब भगवान कहते हैं बच्चे चलो सत्युगी दैवी गुणों को धारण करो, और अगर हम वो दैवी गुणों को धारण करते हैं तो संसार भी दैवी बनेगा, बनना ही है, वो तो भगवान की अटल भावी है, अटल सत्य है, बनना ही है। लेकिन कैसे बनेगा, कब बनेगा, मैं कैसे उसमें चल सकती हूं, क्योंकि हम ही ने तो सत्युग में चलना है ना। किस किस को सत्युग में चलना है सोच के देखो, आपके रिलेटिव्स भी देवता हैं, आपके पेरेंट्स भी देवता हैं, आपका बच्चा भी देवता है, फ्रेंड्स भी देवताएं हैं क्योंकि वहां सिर्फ देवता होते हैं और सबके अंदर गुण बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। प्रकृति पांचों तत्व एकदम सुखदाई, कभी प्रकृति उथल पुथल नहीं करती है। ऐसे समय में किस किस को चलना है, हाँ ट्रांसफर ही होना है, ट्रांसफर ही होगा, एक्चुअली ट्रांसफर होगा, क्योंकि सृष्टि चक्र में आत्माएं जब उतरना शुरू करती हैं, चक्कर लगाती हैं सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर कलयुग के अंत में एक समय आता है जो कि बहुत समीप का समय है, अब सबका घर जाने का समय है। साइकिल में एक बार तो घर जाएंगे ना, नाटक पूरा हुआ अब घर जाना है, तब सर्व आत्माओं का घर जाने का समय। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, ये बहुत गहरी बातें हैं, एक्चुअली बहुत अध्यात्म में गहरी, गहरी का मतलब ट्रूथ है, सत्य है, सिंपल है, परंतु इसको समझने के लिए आज जो हमें विवेक यूज करना है ना, उसके लिए थोड़ा हमें समय देना पड़ेगा, थोड़ा विचार करना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा। तो अब सबका घर जाने का समय है, पर ऐसा नहीं होगा सब घर चले गए, दुनिया खाली, फिर सब उतरना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है। परमात्मा ने बताया ट्रांसफॉर्मेशन होता है, द वर्ल्ड गोज थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी बिगन, इट इज हैपनिंग। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है, मुक्ति और मोक्ष, मैं आपको क्लास के बाद जवाब दूं तो चलेगा? मैं चाहूंगी शिव भाई वो साइंटिफिक पॉइंट वाला जरूर बात रखें, विल गिव हिम सम टाइम, तो आई विल जस्ट कंप्लीट एंड देन आई आंसर यू सेपरेटली। डेफिनेटली इसका उत्तर है, तो एक मिनट ब्रदर, आप अपनी पॉइंट याद रखना, फिर करते हैं बात इस पे। तो अब घर चलना है, तो घर चलने के लिए तैयार है? नहीं, अभी तो घर में बहुत सारे काम पड़े हैं, अभी तो हमारे बच्चे सेटल होने हैं, हाँ नहीं, तो घर चलना मतलब ऐसा नहीं कि हम कहते ही चल पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है, जब समय आएगा तभी जाएंगे, लेकिन जाना तो सबको है, ये भी सबको पता है, लेकिन कैसे जाना है भगवान कहते हैं आज आपके पास चॉइस है। एक है आत्मा तकलीफों से शरीर छोड़कर मुश्किल से जा रही है, खाली हाथ, ड्रेन्ड आउट होकर, थक कर, अपने सारे नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स को खत्म करके बड़ी मुश्किल से जा रही है, और दूसरा आत्मा शरीर में रहते हुए बार बार सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करते हुए चोला को ढीला करके रख रही है, जब जाने का समय आएगा इतना पुण्य कर्म श्रेष्ठ कर्म करके रखा हुआ है, ज्ञान युक्त होकर चल के इतना कर्म अच्छा बनाया हुआ है कि जाते समय वो पुण्य का खाता उनकी मदद करता है, आराम से जा रहे हैं, फिर साइकिल में तुरंत उतर के नीचे सत्युग में आ जाएंगे उस पुण्य के आधार पर जो हमने इस संगम युग में कमाया है। तो वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान समय संगम युग का समय चल रहा है, जब परमात्मा और आत्मा का संगम होता है संसार में, और किसी भी युग में आत्मा और परमात्मा का संगम नहीं है, देव आत्माओं का संगम है, धर्म आत्माओं का संगम है, संत आत्माओं का संगम है, परमात्मा और आत्मा का संगम कलयुग के अंत में आता है। ठीक है, नहीं नीचे आने के बाद संगम नहीं होता। हाँ
अभी कलयुग से सतयुग में जाने का टाइम, तो सतयुग और त्रेता युग के भी कॉन्फ्लुएंस पॉइंट में कोई ऐसी बुक ऐसी नहीं पूछेगा ना कि आप सोल कॉन्शियसनेस पूरे में हो, तो वहां से अगर हम कम सोल कॉन्शियसनेस हो जाएंगे।
अच्छा, आप अपने घर में कोई चीज को रिप्लेस कब करते हो? जब वो बिल्कुल खत्म हो, मतलब बिल्कुल काम करना बंद कर जाए, या हर 6 महीने में बदल देते हो उस चीज को? नहीं, आत्मा जब त्रेता में आती है, सतयुग से त्रेता में आएगी, थोड़ा सा डिप्लीशन होगा, त्रेता से द्वापर में आएगी थोड़ा सा डिप्लीट होगा, लेकिन जब कलयुग के अंत तक पहुंचती है ना, टोटली डिप्लीट हो जाती है 5000 ईयर्स में। आपका फोन थ्रू द साइकिल, क्योंकि इसके और थोड़ा डिटेल्स है जिसमें हम अभी नहीं जा सकते समय की सीमा को देखते हुए। द डिप्लीशन इज बाउंड टू हैपन, क्यों? क्योंकि समय की क्वालिटी भी डिप्लीट हो रही है। सतयुग से त्रेता बन रहा है, त्रेता से द्वापर बन रहा है, द्वापर से कलयुग बन रहा है, डिप्लीट है ना, डिप्लीशन हो रहा है ना। समय में डिप्लीशन आएगा, समय के क्वालिटी में फर्क पड़ेगा, आत्मा की क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक कपड़ा खरीदते हैं, जब आप खरीदते हैं नया होता है, लेकिन आप 2 साल के बाद उसको देखें तो वो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप 6 मास के बाद उस कपड़े को देखो, पुराना हो जाएगा, 1 साल के बाद देखो और पुराना हो जाएगा, पुराना तो होगा ना। देखिए, नहीं, यही बात है, हम ये समझते हैं ना आत्मा परमात्मा का संगम ही फाइनल है, उसके बाद कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चा जब घर से तैयार होकर नहा धो के जाता है, शुद्ध पवित्र होता है, साफ सुथरे होते हैं, फिर उसके बाद वो जब घर से बाहर जाता है, बाहर के वातावरण में मिट्टी भी है, पोल्यूशन भी है, स्ट्रेस भी है, सब कुछ है, तो समय अनुसार बाहरी वातावरण से जो कुछ उसको मिला उससे वो मैला हो जाता है। फिर जब वो घर आता है तो मैला आता है, सुबह की तरह नहीं आता है। फिर उसके बाद जब वो घर से अगले दिन फिर से उसको जाना है, दिस इज हिज लाइफ ऑफ द चाइल्ड। एवरी सिंगल डे द चाइल्ड हैज टू गो आउट इन द मॉर्निंग एंड कम बैक इन द इवनिंग। दैट्स द ऑर्डर दिस वर्ल्ड ऑल्सो गोज थ्रू। आप कंस की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ठीक है, हाँ। आज हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइथोलॉजीज है, लेट अस रीविजिट दैट वंस ऑल्सो। आज हम माइथोलॉजीज को किस रूप में समझ रहे हैं? माइथोलॉजिकल जो स्क्रिप्ट्स हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, या कोई भी हो, जब जिन्होंने उसको लिखा था ना, उनकी बुद्धि की क्वालिटी क्या थी? और आज जो इंसान की बुद्धि की क्वालिटी है, आपको क्या लगता है, दोनों समान है? जो ऋषि मुनि विद्वान व्यास जी हुआ करते थे, उनकी बुद्धि की क्षमता सोचने समझने और परसीव करने की, उनकी जो क्षमता थी और आज के इंसान की जो क्षमता है, बराबर है या अलग है? आपको क्या लगता है, अलग है? ठीक है, जब उन्होंने, आपको पता है, उन्होंने ये कथाएं, ये कहानियां, श्लोक, मंत्र क्यों लिखे थे, ये पात्र क्यों क्रिएट किए थे? ताकि इंसान को मैसेज मिल सके। शास्त्र क्यों लिखे गए? शास्त्र हमारे को मैसेज देने के लिए लिखा गया था, टू कन्वे सम मैसेज टू अस। और वो पात्र क्या थे? अच्छा, ये बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ सिस्टर, आप प्लीज अपने बच्चों का नाम दुर्योधन रख लो, दुशासन रख लो, आप में से कोई है रखना चाहेगा? दुर्योधन, दुशासन, दुकर्ण, रावण, कंस रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। तो आज का कलयुग के अंत में जो इंसान है वो इस नाम को नहीं रख सकता है। तो आज से पहले जो मानव हुआ करते थे, जो बेहतर समय के मानव हुआ करते थे, क्या वो अपने बच्चों का नाम सच में ऐसा रखते होंगे? या उस पात्र का कोई अर्थ है? दुर्योधन कौन है? दुर्योधन, हर, लेट मी कंप्लीट दिस पॉइंट सिस्टर, दुर्योधन अर्थात ऋषि और मुनियों ने उस समय ये पात्र इसलिए लिखा ताकि इंसान को पता चले एक समय ऐसा आता है संसार में जब जो जो मनुष्य आत्माएं धन का दुरुपयोग करेंगी, दुर्योधन अर्थात धन का दुरुपयोग करने वाली हर आत्मा दुर्योधन है और दुर्योधन जैसी आत्मा का रिजल्ट क्या होता है, विनश्यंति। दुशासन, कौन है दुशासन, जो शासन का दुरुपयोग करे। दुकर्ण कौन है, जो कर्ण, लेट मी कंप्लीट दिस पॉइंट ब्रदर, दुकर्ण कौन है जो कानों से व्यर्थ सुने, नेगेटिव सुने, वो दुकर्ण हो सकता है। जब कौरव सेना में सब कुछ दुष और दुर से शुरू हुआ तो नतीजा क्या निकला, अगर मानव ने कभी ऐसे कर्म किए तो उसका नतीजा हमेशा ही विनश्यंति हो जाएगा। इसलिए पहले से मैसेज दिया ऐसा पात्र नहीं बनना है। कंस का मतलब क्या है, कंस अर्थात कंस किसके लिए प्रसिद्ध है, नवजात शिशुओं को मार देता था अपने स्वार्थ के लिए। क्या आज हम फीटिसाइड्स नहीं देख रहे हैं, आज हम नहीं देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे केसेस, क्या आज कंस समान संस्कारों वाली आत्माएं नहीं है। तो इन पात्रों को देखिए, माइथोलॉजीज को भी आप उसके पीछे के अध्यात्म को समझिए, उसके पीछे के अर्थ को समझिए, ताकि उससे आज के जीवन को हम रिलेट कर सके। मुझे धन का दुरुपयोग नहीं करना है, मुझे दुशासन नहीं बनना है। शासन कौन सा, चलो भारत का गवर्नमेंट हमारे हाथ में नहीं है, पर आपका घर का शासन तो आपके हाथ में है, आपके ऑफिस का शासन तो आपके हाथ में है, आपके नेबरहुड का शासन तो आपके हाथ में है, प्लीज। और ऐसे ही हमें दुकर्ण नहीं बनना है, हमें कंस नहीं बनना है। ये हमें मैसेज मिल रहा है शास्त्रों से, बट वी आर पिकिंग अप जस्ट द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड द कैरेक्टर, इट इज मच मोर देन दैट ऑल्सो। वैसे अभी 12:20 हो गया है तो इसका और डिटेल है, अगर आप, वैसे तो शिव भाई अभी आ रहे हैं, कुछ उत्तर वो देंगे आपको, लेकिन समय का जो चित्र है, समय का जो ज्ञान है जो परमात्मा ने दिया, वो कहा 5000 वर्ष है, 4 युगों से गुजरता है, संगम युग आता है जब परमात्मा आकर इस संसार में आत्माओं को सत्य ज्ञान देकर कर्म को श्रेष्ठ करना सिखलाते हैं, संस्कारों को सत्युगी बनाते हैं, गुण और शक्तियों की धारणा कराते हैं ताकि संसार में परिवर्तन आए। जैसे हर चीज साइक्लिक होती है, समय भी साइक्लिक होता है। कलयुग एक शैतान बच्चे की तरह है, सत्युग एक अच्छे बच्चे की तरह है। अगर एक शैतान बच्चे को घर से बाहर करना हो, चुपचाप चला जाएगा, चला जाएगा, नहीं जाएगा, उधम मचाएगा ना। अभी कलयुग भी जाने लगा है, इसलिए बहुत उथल पुथल हो रही है, आवाज हो रही है। शिव भाई, वुड यू लाइक टू टेक सम आंसर्स? अवधारणा गलत नहीं है सिस्टर। हाँ देखिए, नहीं मैं आपको बताती हूँ, आपके सारे क्वेश्चंस वैलिड हैं, सारे और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके अंदर प्रश्न उठ रहा है, इसका मतलब आप ध्यान से सुन रहे हैं। आपके प्रश्नों को आप नोट करके रखना, और अगर सच में, मैं कहती हूँ सिर्फ प्रश्न पूछना आपका लक्ष्य नहीं है, अगर आपको उत्तर चाहिए तो इसका उत्तर है, क्योंकि ज्ञान इसी को कहा जाता है जिसमें किसी भी एंगल से आप देखो आप सत्य तक पहुंचेंगे। तो इसका उत्तर है, लेकिन इसको किसी कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। दैट कॉन्टेक्स्ट हैज टू बी अंडरस्टूड फर्स्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। तो उसके लिए हम आपको सजेस्ट करते हैं, क्योंकि यहां जो कॉन्फ्रेंस में हम आए हैं इसमें हर चीज आपको इंट्रोडक्शन मिल रहा है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डीप थियोरी ऑफ इट, है ना। अभी वी आर जस्ट टचिंग अपॉन सम बेसिक पॉइंट्स। तो क्योंकि समय की सीमा है, क्योंकि उत्तर तो सभी का है, उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन देयर हैज टू बी अ कॉन्टेक्स्ट व्हिच नीड्स टू बी अंडरस्टूड, एंड सीइंग द टाइम वी मे नॉट बी एबल टू गो इनटू डिटेल्स नाउ, बट डेफिनेटली इफ यू वांट द आंसर्स प्लीज गो टू सेंटर्स एंड डू द 7 days मेडिटेशन कोर्स, यू विल गेट द डिटेल्स। और सिस्टर का मुक्ति का प्रश्न आप क्लास के बाद मेरे पास आकर के मिलना। That requires more time for everything. या फिर मैं मुक्ति मोक्ष का बता सकती हूँ। जी 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 हाँ भाई सब एक मिनट बस, वो ब्रदर एक बार पूछ लें। शिव भाई आप भी आगे ही आ जाइए। कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट एवरीबडीज अटेंशन टू दिस ब्रदर्स क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। शिव भाई आप लेंगे या मैं लूं? आपका क्वेश्चन पता है बहुत अच्छा है। मैं हम लोग कोशिश कर रहे थे सेशन को शॉर्ट करने के लिए, उस पॉइंट पर टच नहीं कर रहे थे। क्या है मैं बताती हूँ, ये 700 करोड़ जो आज है ना, आज से 100 साल पहले 700 करोड़ नहीं थे ना, द नंबर वॉज लेस राइट, उससे थोड़ा और पहले और कम थे, उससे पहले और कम थे। इसका मतलब सत्युग का जो आदि समय था, परमात्मा जब ज्ञान देते हैं तो बताते पूरे साइकिल और पूरे सृष्टि का ज्ञान देते हैं, कहते हैं कि सत्युग की जो आदि हुई थी ना, इस पूरे सृष्टि के ऊपर 900,000 आत्माओं से शुरुआत होती है। उस समय 900,000 की आबादी से शुरू हुई, आज 700 करोड़ है। तो ये जो 700 करोड़ में से 900,000 तो नीचे उतर गए, बाकी कहां चले गए? बाकी अभी ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि दे विल वेट, क्योंकि अभी जो संगम युग में जितनी कमाई आत्मा करके जाएगी, जितनी लेवल जितनी डिग्री की प्योरिफिकेशन करेगी, उस डिग्री के अनुसार उस समय में वो नीचे उतरेगी। जो 900,000 आत्माएं होंगी वो एब्सोल्यूट 900,000 के लगभग आत्माएं बहुत अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाएंगी, ये सृष्टि की भावी है, बनाएंगी। और वही आत्माएं जाकर ऊपर फर्स्ट शुरू के सत्युग की शुरुआत में आ जाएंगी। फिर धीरे धीरे मान लो किसी आत्मा ने सतो प्रधानता में 100% नहीं किया, 95% किया, वो थोड़े समय के बाद आएंगे। 90% किया, थोड़े समय के बाद आएंगे। 80% किया, थोड़े समय के बाद आएंगे। किसी ने 50% ही किया है, वो सत्युग त्रेता के बाद आएंगे, वो द्वापर में आएंगे सीधा। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भगवान जो है वो जस्टिस करता है, वो ऐसा नहीं करेगा उसके कुछ बच्चों को लेकर सत्युग बना देगा और बाकी यहां पर परेशान हो रहे हैं। नहीं, भगवान पूरे विश्व का कल्याणकारी है, पूरी दुनिया के लिए। जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, जबकि टीचर को भी पता है ये बच्चा फेल होगा क्योंकि ये पढ़ता नहीं है, ये बच्चा 50% ही लाएगा, पता है, पर वो 100% के हिसाब से पढ़ाएगा। और वो क्लास को तब तक एग्जाम में नहीं बिठाएगा जब तक सारे बच्चों का सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता। वो सिर्फ फर्स्ट 10 रैंक्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो शार्प माइंडेड है तो चलो भाई मैं तो एग्जाम ले ही सकता हूं ना, मैं तो टीचर हूं, एग्जाम ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ तो सत्युग की स्थापना के लिए जो चाहिए वो रेडी है, लेकिन जो बाकी संसार की विश्व की आत्माओं को भी तो चांस देना है, उनको भी तो प्राप्ति करानी है ना उनको। चलो वो सत्युग की आदि में अगर कोई नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, कम से कम त्रेता रेडी तो बनाना पड़ेगा ना, उनको भी तो प्राप्ति होनी ही चाहिए ना। भगवान तो सत्युग के लायक बना रहा है, हम त्रेता के बन रहे हैं, हम सत्युग के बन रहे हैं, हम सत्युग के मिड के बन रहे हैं, वो हमारी क्षमता पर डिपेंड करता है। इंतजार की कोई बात ही नहीं है, परम धाम में कोई इंतजार नाम की चीज नहीं होती है, देयर। हाँ
ये प्रश्न एक और इससे निकलता है,
अविनाश नहीं, रूप है ज्योति बिंदु, हाँ, चोला है। जो ये इफेक्ट आता है ना, जो हम आप कह रहे हैं एनवायरमेंटल डिफेक्ट्स हमारे को असर करती हैं, शरीर को असर नहीं करती है, मोर देन द शरीर इट अफेक्ट्स द सोल ओनली। क्रोध क्या करता है, सोल में है कि बॉडी में है? मन में क्रोध आता है ना, बुद्धि क्रोधित होती है ना, हलचल में आती है ना, संस्कारों में क्रोध आता है तो संस्कार बिगड़ते हैं ना। तो आत्मा प्रभावित हो रही है, शरीर आत्मा के प्रभाव के कारण शरीर प्रभावित हो रहा है, बीमार पड़ता है, डेफिशिएंसीज आती हैं, लेकिन इम्बैलेंसेस होते हैं, लेकिन प्रभावित आत्मा हो रही है। तो ऑन अ सोल इज ऑन अ जर्नी इन द साइकिल, एंड इन द कोर्स ऑफ दैट जर्नी द सोल गेट्स पोल्यूटेड, and then there is a time when the God gives the true knowledge and makes the soul conscious, विच हैज बीन बॉडी कॉन्शियस सो फार। तो जब सोल कॉन्शियस बनाते फिर वो आत्मा प्योरिफाई होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, इस तरह से ये साइकिल चलता है। एम कुछ नहीं है, एम क्या होगा? देखिए आप सिंपल चीज है, आकाश नीला है, व्हाट इज द एम? इट इज देयर राइट, वो नीला है। पत्ते हरे क्यों है? व्हाट इज द एम? वो हरे हैं, ये प्रकृति का नियम है। कुछ चीजें यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, दे नीड नॉट हैव टू बी एन एम टू देम। हम पढ़ाई कर रहे हैं, एम है। आज भी हम ये ईश्वरीय नॉलेज ले रहे हैं, व्हाट इज द एम? देयर इज एन एम टू प्योरिफाई द सेल्फ। हाँ, आत्मा का भी एक एम है इस संसार में रहने का, सात गुण रिफ्लेक्ट करने का। अब हम नहीं कर पा रहे हैं तो द एम इज कम बैक टू दैट स्टेज अगेन, देन द साइकिल स्टार्ट्स। हो गया नहीं, आप ले लो, ठीक है आप ले लो।
ओम शांति।
नो प्रॉब्लम।
आज का जो सेशन है ना, जो साइक्लिक टाइम है, सच बोलो तो आप लोगों को जितना अब तक इनपुट मिला उसके हिसाब से ये काफी एडवांस कोर्स है ना। इन बिटवीन देयर आर लॉट ऑफ गैप्स एंड दैट इज वन रीजन व्हाई यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस एंड आई कैन अश्योर यू सिटिंग देयर आई नो बोथ साइड, दिस साइड एंड दिस साइड। इफ आई वाज देयर आई वुड हैव आस्क्ड इवन 10 टाइम्स मोर क्वेश्चंस एंड आई कैन टेल यू अनदर थिंग, एवरी क्वेश्चन दैट यू आस्क द सिस्टर कैन आंसर। आई नो दैट शी कैन आंसर बट शी रिक्वायर्स सर्टन टाइम, एक सिक्वेंशली किसी चीज को बताना। अभी भी वो जो आंसर दे रही है दैट इज द मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम व्हाट शी कैन से, बट इट रिक्वायर्स टाइम, उससे कम टाइम में तो इट कैन नॉट बी डन। सो शुड वी शिफ्ट अ लिटिल, आई केम हियर बिकॉज ऑफ दैट साइंस पार्ट, सो इफ दैट पार्ट, बिकॉज दैट विल रिक्वायर अ लिटिल टाइम टू इवन ट्राई टू गिव यू सम काइंड ऑफ, शुड आई कंटिन्यू दीदी, शुड आई डू? ओके, तो बट नहीं वो हम लंच टाइम में। ओके, जो ये आज का नॉलेज जो ये क्लास था, यू नो लॉट ऑफ पीपल आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट इफ आई वाज सिटिंग देयर द बिगेस्ट थिंग दैट वुड हैव हिट मी, यू नो टू थिंग्स आपने उसमें देखा। पहला चीज वो बोल रहे हैं कि टाइम ओनली 5000 इयर्स, नो दैट रियली हिट्स मी हार्ड बिकॉज मैंने तो कितना हिस्ट्री पढ़ा, ये था वो था वो था, तो 5000 में आप कैसे बोल रहे हो? ओके, उससे भी ज्यादा व्हाट हिट मी वॉज इट सेज कि आफ्टर एवरी 5000 इयर्स इट रिपीट्स आइडेंटिकली, नाउ दैट इज अ बिग बिग, यू नो व्हाट डज दैट मीन? इट मींस 5000 इयर्स पहले आप ऐसे बैठे थे, मैं ऐसा बैठा, एंड 5000 इयर्स के बाद अगेन यू विल बी सिटिंग लाइक दैट एंड आई विल बी सिटिंग लाइक। सो आपके बाकी क्वेश्चन सर मतलब लेसर, इफ फॉर मी दिस वॉज द बिगेस्ट थिंग दैट हिट मी, मतलब आप ऐसे कैसे, मतलब दिस इज वॉट एवर आई हैव लर्न टिल नाउ इट इज जस्ट डिफाइंग दैट। सो माई हिज क्वेश्चन, किसने बोला था साइंस का कुछ था, हाँ, सो वॉट आई कुड मेक आउट फ्रॉम हिज क्वेश्चन वॉज इट हिट हिम एंड हीज इंटेंशन वॉज ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड, ही वॉन्ट्स टू बिलीव इट, बट ही सेज कि मुझे कुछ दियो तो सही, रास्ता तो दियो, बताओ तो सही कैसे हो सकता। इट नीड नॉट बी अ प्रूफ बट एटलीस्ट अ वे कि दिस इज द वे इट इज पॉसिबल। तो आई विल जस्ट टच ऑन दैट कि हाउ इट इज पॉसिबल। नाउ यस्टरडे ओनली आई वॉज स्पीकिंग विद कैप्टन सौरव एंड हमारे वेन वी आर डूइंग अ बेसिक कोर्सेस, तो जामनगर में हमारा कोर्स था, तो उधर एक पार्ट ऑफ द टीचिंग पार्ट ऑफ आवर कोर्स you have to take a project, any topic and on which you have to give this lecture. So us samay I had taken time is cyclic. Now this was 25 years back. To abhi wo 1.5 ghante ka lecture tha, main wo 15 minute mein how will I explain, but at least I'll try to give a insight. And through science how do I understand that time is cyclic and time is such short. To I'll start with some basic, you will have to help me because some basic science ke laws hai. Okay, what you see is a scene, hai na, aapke samne jo bhi dikh raha hai aapko scene hai. What does a scene comprise of? A scene comprises of matter in particular arrangement, space hai aur space mein matter hai, correct? Scene ka kya matlab hua, एक स्पेस है और उसके अंदर मैटर का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। सीन चेंज होने का क्या मतलब होता है? उसी स्पेस में मैटर थोड़ा चेंज हो गया। सो इफ इन दैट सेंस व्हाट इज टाइम एक्चुअली? अगर एक सीन होता और चेंज ही नहीं होता तो टाइम का कोई कंसेप्ट होता उसमें? एवरीथिंग वॉज स्टिल देयर। इस स्पेस में कुछ मैटर है और वो एकदम सब कुछ अपनी जगह पे, तो टाइम का कंसेप्ट होता? सो व्हाट इज टाइम एक्चुअली? इट इज दिस चेंजिंग ऑफ सीन्स। एम आई करेक्ट? चेंजिंग ऑफ सीन्स इज व्हाट इज टाइम। ओके, नाउ व्हेन वी से मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? एटम। एक्चुअली एटम भी नहीं है, उससे भी नीचे है। बट कुछ समय पहले हम लोग वी यूज टू बिलीव, यू नो, द स्मॉलेस्ट थिंग इज एटम। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकला। फिर उसके बाद अभी क्वासी पार्टिकल निकला। बिकॉज साइंस इज इवॉल्विंग, साइंस हैज गॉट इज लिमिटेशन। साइंस ह्यूमन का क्रिएशन है ना, तो उसकी अपनी लिमिटेशन है। लेट अस से द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, एंड फॉर द मोमेंट, फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन, लेट अस अज्यूम एटम इज द स्मॉलेस्ट थिंग अभी के लिए। कुछ और होगा इससे छोटा, बट लेट अस अज्यूम एटम है। सो नाउ ए सीन इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन पर्टिकुलर स्पेस, करेक्ट? ओके, नाउ व्हाट डज साइंस बिलीव? अब मैं साइंस के आधार पर समझने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाट डज साइंस बिलीव? हाउ डिड ऑल दिस थिंग गॉट क्रिएटेड? साइंस में क्या बताते हैं, कैसे क्रिएशन हुआ? बिग बैंग थ्योरी। यू नो व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी? एवरीथिंग वॉज कंडेंस्ड, एक एक्सप्लोजन हुआ एंड द मैटर स्कैटर्ड एंड इट इज स्टिल यू नो गोइंग आउट and after a particular time it will stop and then again it will come inside. This is big bang theory. You know, explosion hua, matter is going out, after a period of time it will again come, it will collapse and fir wapas kuch hoga and wapas it will go up. Okay, that means the matter jo space mein ja raha hai to ek limited space hai, you know. So basically it is some kind of space. इट इज सम काइंड ऑफ स्पेस, इसके अंदर मैटर अलग अलग कर रहा है, इट इज गोइंग टू सम लिमिट एंड देन इट इज कम बैक। तो द स्पेस इज लिमिटेड एंड मैटर इज ऑल्सो लिमिटेड। मैटर के लिए वी हैव ए बेसिक लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। व्हाट डज इट से? मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। व्हेन मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, आप एक ग्राम मैटर भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहां इतना सारा मैटर कहां से आया? इतना सारा मैटर कहां से है? नहीं, कन्वर्जन है, बट एनर्जी के फॉर्म बोले मैटर के, बट ओरिजिनली कहां से है? बिकॉज यू कैन नॉट क्रिएट इवन वन ग्राम ऑफ मैटर। तो द आंसर इज एटर्नल, इट वॉज ऑलवेज देयर एंड द साइंस लॉ सेज यू कैन नॉट क्रिएट इट, सो इट वॉज ऑलवेज देयर। नाउ दिस मैटर विच इज प्लेइंग इन द स्पेस, दिस मैटर विल बी फाइनाइट और इनफाइनाइट? Finite matter in finite space, correct? Finite matter in finite space. What was the scene? This arrangement of matter in some particular format. अब आपके पास समझो दो ऐसे स्पेस है और मेरे पास एक बॉल है ना, एक बॉल है, ये बॉल को मेरे को इसमें डालना है, तो how many kind of combinations it can happen? दो स्पेस है, एक बॉल है, टू। वही अगर तीन स्पेस होते और दो बॉल होते, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते? तो परमिटेशन का वो लॉ है ना, आई थिंक PNR ऐसा कुछ बोल देते हैं। नो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली वो, यू नो, यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट कि कितने कॉम्बिनेशन ले सकता। तो तीन स्पेस है, दो बॉल है, तो छह पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन कर सकता। अब दिस इज अ फाइनाइट स्पेस एंड दिस इज अ फाइनाइट मैटर, वो चेंज होता जा रहा है, अलग अलग परमिटेशन ले रहा, अलग अलग परमिटेशन, बट इट विल हैव ए फाइनाइट कॉम्बिनेशन। फाइनाइट मैटर, फाइनाइट स्पेस, फाइनाइट कॉम्बिनेशन, करेक्ट? एनीबडी हू डिफर्स? करेक्ट। सपोज इट वॉज 10 सीन्स, वॉट विल हैपन वंस ऑल दोज 10 कॉम्बिनेशन आर ओवर? द 11th सीन विल बी ए सीन विच हैड हैपन्ड अर्लियर एंड इट विल बी एग्जैक्ट। अभी मेरे इसमें दो, सिर्फ दो ही थे, ओनली टू वेर देयर, एक बार ऐसे कर दिया, दूसरे बार ऐसे कर दिया, नाउ तीसरे बार मैं क्या करूंगा, मेरे को एक ऐसा सीन लेना पड़ेगा विच हैज ऑलरेडी हैपेंड, यू अंडरस्टैंडिंग, स्पेस लिमिट, फाइनाइट स्पेस, फाइनाइट मैटर, फाइनाइट कॉम्बिनेशंस, ऑल कॉम्बिनेशंस फिनिश, नाउ यू हैव अ कॉम्बिनेशन विच हैज हैपेंड इन द पास्ट एग्जैक्टली. तो इज इट पॉसिबल दैट दिस सीन कैन रिपीट, आप लोग ऐसे ही बैठे हो, मैं ऐसे ही खड़ा हूं, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट फर्स्ट डोंट जंप. नहीं नहीं नहीं, राइट नाउ दिस आइडेंटिकल सीन कैन इट रिपीट और नॉट, दैट इज माय क्वेश्चन. नाउ अभी इट इज अ बिग थिंग ना, आफ्टर सर्टेन इयर्स, से 1 lakh years, एग्जैक्टली दिस सीन इज देयर, यू आर सिटिंग, आई एम स्टैंडिंग, एवरीथिंग, फैन इज मूविंग एट द सेम स्पीड, इजंट दैट अ माइंड बॉगलिंग इन्फॉर्मेशन? हाँ, ना ना ना, फाइनाइट में इट विल बी फाइनाइट ओनली, हाउ कैन इट बी इनफाइनाइट, इट कैन नेवर बी इनफाइनाइट. आई सेड सी दिस मैटर इज प्लेइंग इन द स्पेस, द मैटर हैज टू बी फाइनाइट, इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट. ओके, नाउ सी द पॉइंट हियर, आई सेड फर्स्ट थिंग, a scene can repeat after some time identically, that is a big revelation, it can happen identically, sab kuch waise ka waisa, same parent, same everything, it's a very different thing, you know, just like a video film, 3 ghante ka record ho gaya, agli bar play karoge to if that mosquito was recorded at one particular time, it will play exactly at that time, that scene is repeating. Now the next question comes, from one scene, ek scene aisa tha, dusra scene aisa tha, दूसरा सीन ऐसा था, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन सीन टू अनदर सीन, इज इट रैंडम? वन सीन टू अनदर सीन, इज इट रैंडम? द ट्रांजिशन फ्रॉम वन सीन टू अनदर सीन फॉलो सर्टन रूल्स ऑफ द यूनिवर्स एंड इट, वन मिनट, एंड इट फॉलोज दोस रूल्स एंड द हाउ द सेकेंड सीन जो बन रहा है उसका सीड फर्स्ट सीन में है. First scene is only creating the second scene. Now why I am saying you, why it is not random? Suppose second scene, first scene se randomly generate ho jata. I can never predict what will be the sunrise tomorrow. Can I predict if it was random? Anything is happening, any scene is creating from any scene, then toh I can never predict moonrise kab hoga, sunrise kab hoga. Today I can exactly predict the sunrise. So the second scene, ek scene hai, यहां से जो दूसरा सीन बन रहा है, दिस सीन इज डिटरमाइनिंग द नेक्स्ट सीन एंड दिस सीन, उसके कंडीशंस ऐसे हैं कि इट विल डिटरमाइन द थर्ड सीन. नहीं, द सीड फॉर द नेक्स्ट सीन इज लाइज इन दिस सीन. रैंडम, यू अंडरस्टूड? सपोज दिस सीन वॉज रैंडम, कुड यू प्रेडिक्ट वॉट वॉज दिस सनराइज टुमारो? कुड यू प्रेडिक्ट सनराइज टुमारो? But today we are predicting exactly what 6:24 sunrise. I'm coming to that. आप मेरा डेढ़ घंटे का सेशन 10 मिनट में बोल रहे हो तो थोड़ा बहुत शॉर्टकट लेना पड़ता. So you that thing is clear? You know, one scene is generating the second scene, second scene is generating the third scene.